Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Manasa eva idam aptavyam neha nanasti kinchana. मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय का प्रथम वल्ली का 11वां मंत्र है। वेदांत का चरम लक्ष्य है अपने आप को जानना। मैं कौन हूं, ये साधक के जीवन में जब प्रश्न उठता है तो अपने को जानने के लिए साधक गुरु के पास जाता है। श्रवण मनन निधिध्यासन आदि के द्वारा वो जान लेता है कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं प्रश्न अपने आप से है। स्वयं अपना आत्मा स्वयं होने के बाद भी हमें मध्य में भ्रम हो गया है कि मैं कौन हूं, कि जान नहीं पा रहे। इसीलिए हम गुरु की शरण में जाते हैं, तस्मात् गुरुम् एव प्रपद्ये तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तद्विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत् समितपाणि ही श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठ। आखिर स्वयं अपनी आत्मा हम स्वयं हैं और उसके बाद भी हम जान नहीं पा रहे हैं कि हम कौन हैं, और इसीलिए शास्त्र ने कहा कि मध्य में भ्रम है। ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसको हम अज्ञान बोलते हैं। पंचदशी में इसको बड़े सुंदर ढंग से प्रतिपादन किया है, आभास की सात अवस्था बोल के। आभास माने जीवात्मा। सबसे पहली जो अवस्था मानी गई अज्ञान, दूसरी आवरण, तीसरी विक्षेप, और ये तीन अवस्थाएं जीवात्मा के लिए बंधनकारी। और तीन अवस्थाएं हैं जो साधन रूपा है, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, शोकनाश और आनंदावाप्ति। आगे की अंतिम जो अवस्था है मोक्ष रूपा है। सबसे पहली जो अवस्था है अज्ञान है, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतव। भगवान ने कहा ज्ञान से आवृति जीवात्मा, इसीलिए मुह्यन्ति, ये विक्षेप है। ये जो मोह है वो विक्षेप। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम बोला है भगवान ने, हमारा जो ज्ञान है ना ढका हुआ है, और वो ढका है अज्ञान है ना। अज्ञान का स्वभाव है ढकना, अंधकार का स्वभाव है ढकना, ज्ञान का प्रकाश है प्रकट करना। ज्ञान का स्वभाव है दिखा देना, प्रकाश का स्वभाव है दिखा देना, और अंधकार का स्वभाव है ढक देना। इसलिए भगवान कहते हैं कि अज्ञान, जो मैं कौन हूं हम नहीं जानते हैं, अनादि अज्ञान, इसको भावरूप मानते हैं। हमारे यहां पर एक तत्व है, अज्ञान भी एक तत्व है, जैसे सांख्य के यहां प्रकृति है वैसे व्यवहार काल में अज्ञान भी एक तत्व है, भावरूप है, और वो हमारे ज्ञान को आत्मा को ढक देता है, और इसीलिए आत्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता है। और जब यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता तो हम अनेकों प्रकार की कल्पनाएं करते हैं और वो कल्पनाएं हमें अपने शरीरात्म भाव में ले जाती हैं। जब आत्मबोध यथार्थ नहीं होता है तो फिर हम अपने आप को कुछ भी समझ लेते हैं और कुछ भी समझने में यही है कि मैं शरीर हूं, मैं इंद्रियां हूं, मन हूं, बुद्धि हूं। हमें अक्सर ऐसा भ्रम नहीं होता है कि मैं शरीर हूं, हमें ऐसा भ्रम होता है कि मैं चल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं श्रवण कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं, और ये सारे के सारे भ्रम शरीर संबंधी भ्रम। हम साक्षात ये नहीं बोलते कि मैं मन हूं, हम बोलते कि मैं संकल्प विकल्प कर रहा हूं। तो मैं संकल्प विकल्प कर रहा हूं माने मैं मन हूं। हम कहते कि मैं सोच रहा हूं, मैं चिंतन कर रहा हूं, मैं हूं। और जब मैं शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम अहंकार के साथ जुड़ जाते हैं, कभी चित्त के साथ जुड़ जाते, कभी बुद्धि के साथ जुड़ जाते, कभी मन के साथ, और ये हाथ पैर नाक कान सारी इंद्रियां सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं प्रकृते क्रियमानानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। इसी को भ्रांति कहा है और यही आपका विक्षेप है। तेन मुह्यन्ति जन्तव, और इस भ्रांति को काटने के लिए साधक जाता है अपने गुरु के पास, शास्त्रोपदेशकर्ता के पास, और बहुत सारे उपदेशों का श्रवण करता है। और एक बहुत सुंदर सूत्र है, जो भ्रम जहां का होता है उसी के द्वारा वो भ्रम टूटता है। यदि आंख से भ्रम हो तो आंख से मिटता है, कान से भ्रम हो तो कान से मिटता है। हमारे जिस इंद्रिय के द्वारा जो भ्रम पैदा होता है उसको मिटाना है तो उसी इंद्रिय के द्वारा मिटाना पड़ता है। आंख से कोई भ्रम हो गया तो कान से थोड़ी मिटेगा, वो तो आंख से मिटाना पड़ेगा। आपको आंख से मालूम पड़ा कि ये सर्प है, अब वो जब मिटेगा तो आपके आंख से मिटेगा, क्योंकि अधिष्ठान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अधिष्ठान के अज्ञान से भ्रम पैदा होता है और अधिष्ठान के ज्ञान से भ्रम मिटता है। तो अधिष्ठान का जो अज्ञान है जब ये भ्रम को पैदा करता है तो अधिष्ठान का ही ज्ञान होगा तभी तो भ्रम मिटेगा। और वो अधिष्ठान है आंख का विषय है, रसी है, और उसका जो ज्ञान है वही सर्प भ्रम को मिटा सकता है। और रस्सी का जो ज्ञान है वो कान से नहीं होता है, वो तो आंख से ही होगा। आंख से आपको रस्सी का ज्ञान हुआ और उसी समय उस रस्सी को अधिष्ठान बनाकर जो भ्रम हुआ अयम सर्प वो मिटेगा। ऐसे ही कान से कोई भ्रम हो जाए, बहुत सारे भ्रम हो जाते हैं, सुनने के बाद भी भ्रम हो जाते हैं, और वो जो भ्रम है वो भी कान से मिटेगा। अधिष्ठान का बोध चाहिए, अधिष्ठान का बोध चाहिए। हाँ, हो सकता है जिस अधिष्ठान का आपको ज्ञान हुआ आंख से और उसी अधिष्ठान का ज्ञान यदि कान से भी हो तो, कई बार ऐसा होता है, हमने सुना वो चीज ऐसी है, भ्रम हो गया, और जब वहां जाके देखा तो वैसा नहीं था, तो आंख से देखने के बाद भी वो कान का भ्रम दूर हो जाता है, ऐसा भी होता है। लेकिन वहां अधिष्ठान एक चीज, जिस अधिष्ठान में भ्रम हुआ उसी अधिष्ठान का ज्ञान यदि अन्य इंद्रिय से होता है उसी रूप में तो वह भ्रम मिटेगा। ये दुनिया की जो भ्रम है ये देखे हुए भ्रम है, आंख से चखे हुए नाक से सूंघे हुए, और इन संपूर्ण भ्रमों का जो अधिष्ठान है वो आत्मा, और उस आत्मा का यदि ज्ञान आपको कान से होता है तो यथार्थ वो सारे भ्रम टूटेंगे फिर, क्योंकि अधिष्ठान तो एक है और उस एक अधिष्ठान का ज्ञान संपूर्ण भ्रमों को मिटा देता है। इसलिए सबसे बड़ा जो प्रतिबंध हमारे जीवन में अज्ञान, अज्ञान का आवरण, आवरण जन्य ये विक्षेप, ये सारी दुनिया, मोह, विषाद, कामना, जलन, घृणा, ईर्ष्या, ये सब भ्रम के विस्तार है, ये सब भ्रांति के विस्तार है। और ये तीनों जो अवस्थाएं हैं हमारी, अज्ञान, आवरण और विक्षेप, ये सामान्य जनमानस की अवस्था है और ये बंधनकारी अवस्था है। लेकिन जो चौथी जो अवस्था है उसको बोलते परोक्ष ज्ञान। हम गुरु के पास जाते हैं, लेकिन गुरु के पास जाने के लिए भी बहुत जरूरी है, वर्तमान में असंतुष्ट हुए बिना व्यक्ति भविष्य के निर्माण के लिए अग्रसर नहीं होता है। हम जहां हैं वहां से असंतुष्ट होना बहुत जरूरी है। हम जहां हैं वहीं संतुष्ट हो तो अगली यात्रा संभव नहीं है। कई बार आप बहुत से लोगों को बोलते हैं कि भैया चलो सत्संग में चलो, वो बोलते ठीक है जहां है आनंद है, लेकिन आप सब कुछ छोड़ के यहां आते हैं, इसका मतलब वैराग्य है। आपके अंदर वैराग्य ना होता तो आप यहां आते ही नहीं, सब कुछ छोड़ के और बहुत लगनपूर्ण, बहुत सारा समय देते हुए, ये वैराग्य है। और वैराग्य का अर्थ यही है कि जहां पर हम थे, जहां पर हम हैं, वो हमारे शांति के लिए पर्याप्त नहीं है, उसे अगली यात्रा करना है। महर्षि अरविंद जी को किसी ने पूछा कि आप आध्यात्मिक हो गए, आपने सबका त्याग किया, तो आपको ऐसी कौन सी चीज मिली, आपको कौन से ऐसे दर्शन हुए जिसके कारण आपके अंदर ये बदलाव आया, परिवर्तन आया। उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि मेरे को आत्मा मिला या परमात्मा मिला, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि जिस चीज को मैं बहुत ज्यादा सुखद समझता था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझता था, केवल मालूम पड़ा, वो चीज उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जिसको मैं जीवन का सत्य शाश्वत समझता था, मुझे मालूम पड़ा कि वो सत्य शाश्वत नहीं है, वो कुछ और है। जाना और वहां से उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। ये संसार के क्रमिक व्यर्थता का बोध है। जब तक व्यर्थता का बोध न हो तब तक सार्थक पहल संभव ही नहीं है। और इसीलिए तो वैराग्य, इसी को तो वैराग्य बोलते हैं। वैराग्य का अर्थ ऐसा नहीं है कि आप कुछ छोड़ के कुछ पकड़ रहे हैं। वैराग्य का अर्थ बाहर का परिवर्तन नहीं है, वो परिवर्तन भी संभव है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि परिवर्तन ही वैराग्य है। ये दृष्टि का परिवर्तन है। किसी वस्तु के प्रति मालूम पड़ा ये महत्वपूर्ण नहीं, जीवन का सत्य नहीं, ये शाश्वत नहीं, मालूम पड़ा और आपकी सत्य की यात्रा शुरू हो गई, ये सबसे बड़ा बदलाव है, ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। वर्तमान मालूम हो जाए, जहां पर हम हैं ये सत्य नहीं है, यही तो असंतोष है, हम वहां संतुष्ट नहीं हैं। आपके उपनिषदों का एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। एक बार बृहस्पति जी के पास गए विरोचन, इंद्र तत्व ज्ञान प्राप्त करने के, और वहां बहुत लंबे समय तक सेवा की उन्होंने। सेवा करने के बाद, बहुत सेवा करने के बाद उपदेश किया उन्होंने। 12 वर्ष देवताओं के वर्ष, 12 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या मैंने गुरु की सेवा की आश्रम में रख के। बाद में पूछा ज्ञान चाहिए, बृहस्पति जी महाराज ने पात्र रखा पानी का, बोले इसके अंदर देखो क्या दिखाई दे रहा है, वही आत्मा। इंद्र और बलि दोनों चले गए, प्रसन्न हो गए, वही आत्मा है। पता नहीं क्या ज्ञान हुआ होगा उनको, कुछ हुआ होगा जरूर, लेकिन वापस कभी विरोचन आए नहीं अपने गुरु के पास। उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये जो शरीर है ना, शरीर दिखाई दे रहा था उसमें, जल के अंदर शरीर दिखाई दे रहा था, और उसने समझ लिया कि शरीर ही आत्मा है, और जीवन भर उन्होंने शरीर को ही आत्मा समझा। शरीरात्मवादी विरोचन बने, वर्षों तक साधना की, गुरु की सेवा की, उसके बाद भी समझ में नहीं आया। लेकिन इंद्र सोचने लगा कि शरीर आत्मा कैसे, क्योंकि ये परिवर्तनशील है, विनाशी है। हमने सुना है शास्त्र में आत्मा अविनाशी होता है, और यहां पे शरीर क्षण क्षण बदल रहा है, ये संभव नहीं, ये आत्मा संभव नहीं है। और उसी समय गुरु के पास गए, उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपने तो कहा कि ये प्रतिबिंब ही आत्मा है, शरीर ही आत्मा है, ये कैसे संभव। गुरु ने कहा और तपस्या करो। उनको मालूम था यदि अभी हम इनको समझा देंगे तो बात समझ में नहीं आने वाली। बहुत गुरु की सेवा करने के बाद उन्हें मालूम पड़ा कि ये शरीर से अलग आत्मतत्व, आत्मबोध को प्राप्त हो गए। लेकिन विरोचन वर्तमान में संतुष्ट हो गया, इंद्रियों में संतुष्ट हो गया, इंद्रियों की विषयों को प्राप्त करने में ही उन्होंने अपनी संपूर्ण जीवन की ऊर्जा लगा दी। और इंद्र असंतुष्ट हुए, ये आध्यात्मिक जीवन का असंतोष ये वरदान है। जीवन में असंतोष होना, जीवन में अशांति आना, जीवन में दुख आना, ये हमारे जीवन में अभिशाप नहीं, वरदान है, वरदान है। आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ तो इसी से होता है। योग दर्शन में एक अवस्था मानी गई है, विक्षिप्त अवस्था, मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त और निरोध, ये चार अवस्थाएं मानी गई। और उसमें जो विक्षिप्त अवस्था है उसको भी आध्यात्मिक जीवन का एक स्तर माना है, और वो बहुत मजबूत स्तर माना गया है। उसके बाद फिर निरोध अवस्था है। जब मैं पहली बार पढ़ रहा था मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ, कोई विक्षिप्त अवस्था को भी आध्यात्मिक स्तर माने। भागवत में लिखा है विक्षिप्त मानसो नृप, जब गोपियों ने भगवान की बंसी सुनी और बंसी श्रवण करते हैं, गोपियां विक्षिप्त मन हो गई। विक्षिप्त माने पागल मन वाले हो गए, वो अपने से बाहर हो गए। जहां वो वर्तमान में थी, वर्तमान के आनंद सुख शांति खो गई। ये विक्षिप्त अवस्था है। ऐसी विदुर जी ने भी एक बहुत मजेदार बात बोली। विदुर जी ने कहा कि दुनिया में केवल दो ही आदमी सुखी हैं, या तो परम ज्ञान को प्राप्त वो, या तो बहुत गहरे अज्ञान में है वो, दो ही दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी हैं। और बोले बीच में जो है ना, जो न अज्ञानी और न ज्ञानी है, वो जीवन में सबसे ज्यादा दुखी है। और आध्यात्मिक जो उन्नति है वो अज्ञानी की नहीं होती है और ज्ञानी की भी नहीं, क्योंकि ज्ञानी तो उन्नति को प्राप्त कर चुका है, अब वहां कोई प्रोग्रेस के अवसर नहीं है, वहां आगे बढ़ने के अवसर नहीं, क्योंकि आगे बढ़ चुका है, वहां कोई क्रिया नहीं, वहां कोई पुरुषार्थ नहीं, वहां कोई पाने का उद्देश्य नहीं है और अज्ञानी के जीवन में भी कोई उद्देश्य नहीं, क्योंकि अज्ञानी के जीवन में क्रांति ही नहीं है, क्योंकि अज्ञानी अज्ञान में संतुष्ट है और उसको अपने अज्ञान का ज्ञान भी नहीं है। मजेदार बात, आप अज्ञानी को पूछो तुम अज्ञानी हो, उसको नहीं मालूम। अज्ञान का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है और अज्ञान का ज्ञान भी ज्ञानी के पास जाने से होता है। समझदार आदमी के बगल में बैठने से मालूम पड़ता है कि हम कम समझदार हैं। बहुत ज्यादा प्रेमी के बगल में बैठो तो मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर तो प्रेम है ही नहीं। और मालूम करने का उपाय क्या है? हम अज्ञानी हैं, ये मालूम करने का उपाय क्या है? ज्ञानी के बगल में जाके बैठ जाए। बहुत ज्यादा समझदार आदमी के बगल में बैठ जाए, अपने आप मालूम होना शुरू हो जाएगा। हम तो बहुत अज्ञानी हैं, हम तो बहुत नासमझ हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत ज्यादा दयालु आदमी के बगल में बैठने पर मालूम पड़ता है कि हम तो बहुत ज्यादा क्रूर हैं। अपने आप में क्रौर्य का अनुभव होना बहुत मुश्किल है, हमारे अज्ञान का अनुभव होना बहुत मुश्किल है। इसलिए सत्संग में जाता है आदमी धीरे धीरे और उसको मालूम होने लगता है कि हम तो बहुत अज्ञानी, अपने को जानते नहीं। परम पूज्य महाराज श्री के पास एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि महाराज, जब आप सत्संग श्रवण कराते हैं तब हमें लगता है कि संसार बड़ा दुखी है, हम भी बड़े दुखी हैं, और जब आप यहां से चले जाते हैं तो हमको ऐसा लगता नहीं कि हम दुखी हैं, ऐसा लगता है कि बड़े मजेदार आनंद में मना रहे हैं, बहुत आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और जब महाराज श्री के प्रवचन लोग सुनते थे तो मालूम पड़ता था कि भैया ये दुखालयम अशाश्वतम, भगवान को बताना पड़ा दुखालयम अशाश्वतम। जब अवधू दत्तात्रेय गए महाराजा यदु के पास और जैसे उन्होंने महाराजा यदु ने अवधू दत्तात्रेय को देखा हो उनकी मस्ती आनंद, और वो सोचने लगे कि मैं राजा हूं और राजा होने के बाद भी जो मस्ती और आनंद इनमें है वो हमारे में नहीं है। उन्होंने यही प्रश्न पूछा। महाराजा यदु ने आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान का बाद में विषय रखा। उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मन, आपके अंदर ये जो मस्ती है, ये आनंदपूर्ण जो आपका जीवन है, ये कहां से आया? आकर्तु हूं सुविशारदा, और आप कुछ करते भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, यही आपके पास है और हमारे पास सब कुछ है। दुनिया की सारी सुविधा के साधन हमारे पास हैं, लेकिन शांति नहीं है, और आपके अंदर मैं कुछ भी नहीं देखता हूं, बाहर के ऐश्वर्य के पदार्थ, लेकिन आपके अंदर शांति है। शांत आदमी को देख के मालूम पड़ता है कि हम तो बहुत अशांत हैं। ज्ञानी के सामने बैठ के मालूम पड़ता है कि हम अज्ञानी हैं। प्रेमी के सामने बैठने के बाद मालूम पड़ता है कि हम तो बड़े क्रूर मालूम पड़ते हैं। और यहीं से क्रांति है। आत्मबोध का सबसे पहला जो साधन है अपने अज्ञान को जानना। पहले मालूम तो हो कि हम अज्ञानी हैं, तभी तो हम ज्ञान की यात्रा पर चल पड़ेंगे। और अक्सर हम सत्संग में अज्ञानी बन के नहीं आते हैं, ज्ञानी बन के आते हैं और ज्ञान को बढ़ाने के लिए। आप किसी भी आदमी को पूछना आप सत्संग क्यों श्रवण करते हैं, वो कभी नहीं बताएगा कि मैं अज्ञानी हूं और अज्ञान को दूर करने के लिए मैं अपने आप को जानने के लिए आता हूं। बोलेगा कि मैं जानता बहुत हूं, बहुत लंबे समय से सत्संग कर रहा हूं और थोड़ा ज्ञान बढ़ जाए। हम अपने और ज्ञान को बढ़ाने के लिए आते हैं, और एक बार मालूम हो जाए कि मैं अज्ञानी हूं, मेरे को मालूम नहीं मैं कौन हूं, और वहीं से शुरुआत हो जाती है आध्यात्मिक यात्रा। यह अज्ञान का ज्ञान है, ये विषाद योग है, यही विषाद योग है, यही तो विक्षिप्त अवस्था है और आध्यात्मिक साधना की अंग भूता है। आप मीरा को देखना, विक्षिप्त उस परमात्मा को पाने के लिए बहुत गहरी विक्षिप्तता है, चैतन्य महाप्रभु में गहरी विक्षिप्तता है। आप आधुनिक महात्माओं को देखिए, तुकाराम महाराज आधुनिक, गहरी विक्षिप्तता, वो शांति नहीं है, खोज है। और शांति में खोज नहीं होती है, आदमी आराम से बैठ जाता है, अशांति में खोज है। एक बार मालूम हो और वहीं से हमारी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। फिर गुरु के पास व्यक्ति जाता है, खोजता है, सत्संग करता है, और उस समय उसको ज्ञान होता है, परोक्ष ज्ञान। बुद्ध को भी बोध हुआ, ज्ञान का बोध है वो। ये विषाद योग है। दुनिया के हर साधकों के जीवन में पहले अध्याय, जो पहला जो अध्याय विषाद योग ही होता है। ये भगवद गीता का विषाद योग बहुत हमारे जीवन की साधना की रहस्य की बात बताता है। आपको दूसरे अध्याय में प्रवेश करना है तो आपको पहले अध्याय से होकर गुजरना पड़ेगा। ज्ञान को पाना है तो विषाद से गुजरना पड़ेगा।